ഓം അജ്ഞാനത്തിൽ നന്ദി ജ്ഞാനാഞ്ജനം ശ്ലാഘ ചക്ഷുർവിമുക്തം തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേനും ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം ലീലേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ പദാമയം ദുദാതി സിദ്ധാന്തം ജയകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭുത്യാനന്ദ സദ്വൈതോദാ ശിവാസരി ഗോഭക്തിവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാം ഹരേ രാം 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 ഹരേ. तो भगवान ने 11 चैप्टर में विराट रूप का दर्शन कराया, लेकिन अंत में अर्जुन ने मना कर दिया था कि इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, जिससे ये मेरे अनुकूल नहीं है. तो ऐसा जनरली समझना चाहिए, मानना चाहिए कि जब कोई भी चीज का वर्णन होता है, जैसे कि सुपर लोक के छठे अध्याय के अंत में भगवान ने ऐसा कहा कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है कि जो भक्ति भाव से भक्ति युक्त स्मरण चिंतन कर रहा है. राइट, यो माम अर्थात सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक का जो सेक्शन है वो भक्ति योग के विषय में चर्चा है, ऐसा हमने शुरुआत में सुना था. छठे अध्याय तक भगवान ने योगा लैड समझाया था, 1 से 6 तक. उसमें अधिकतर कर्म ज्ञान और योग के विषय में अधिक चर्चा की है भगवान ने. तो सातवें अध्याय की शुरुआत भक्ति योग से शुरू हुई थी, भक्ति योग सेक्शन की शुरुआत, मिडिल सेक्शन ऑफ भगवत गीता. तो अर्जुन ये नहीं चाहते थे कि इसका अंत, ये सेक्शन का अंत विराट रूप से हो या कोई ऐसे विषय के साथ हो कि जिसका डायरेक्ट भक्ति योग के साथ संबंध ना हो. विराट रूप जो है वो भक्तों के लिए नहीं है, प्रभुपाद ने बार बार बताया था. और इतना भक्ति योग का जो चैप्टर है 6 अध्यायों का, वो विराट रूप के माध्यम से अंत नहीं होता है. अर्थात अर्जुन फिर से भगवान के मुख से भक्ति योग की महिमा सुनना चाहता है. इसलिए अर्जुन का ये प्रश्न पहले 12 चैप्टर में ये प्रश्न पूछेंगे अर्जुन फिर से कि कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है. ये विचार से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य कि इस अध्याय में भक्ति योग की महिमा का विशेष भगवान ने उपयोग किया. इसका चैप्टर का नाम ही प्रभुपाद जी ने भक्ति योग रखा हुआ है. आई मीन ऑफकोर्स नॉट प्रभुपाद, इट इज चैप्टर का नाम या फ्रॉम महाभारत, इसका नाम ही है भक्ति योग. सो 20 श्लोक है इसमें, अधिक श्लोक है भी नहीं. और इसमें भगवान किस तरह से चैप्टर को समराइज करते हैं उसको हम डिवाइड करके बताते हैं. अभी 11वें अध्याय में तो हमने क्या देखा था कि बहुत ज्यादा ऐश्वर्य ऐश्वर्य हो गया था, तो अर्जुन को ऐश्वर्य वाला चीज ज्यादा पसंद नहीं था ऐसे भी. सो एज ए भक्त के रूप में वो भक्ति योग की महिमा को सुनना ही चाहता था. और अंत में तो उसने बोल ही दिया कि मुझे आपका 2 हाथ वाला स्वरूप ही दिखा दो बस. So, इसका इस चैप्टर के केवल 3 भाग हैं. पहला है भक्ति निर्विशेषवाद से ऊपर है, मायावाद से ऊपर है. भक्ति सुपीरियर टू इम्पर्सनलिज्म. ये है चैप्टर टेक्स्ट नंबर 1 to 7. फिर पांच श्लोक है, 8 से 12 स्टेप बाय स्टेप डिवोशन, प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ डिवोशन, भक्ति के क्रमशः वृद्धि। और बाद में 8 श्लोक है, 13 से 20, जिसमें भक्तों के गुण जिससे कृष्णा प्रसन्न होते हैं। एक्चुअली द मोर स्पेसिफिक दोस क्वालिटीज विच मेक वन डियर टू कृष्णा। सो ये तीन, ऐसे तीन ही विभाग है इसका, सो सिंपल। और उसमें भी शुरुआत में तो मायावाद को लेकर के भगवान बताते हैं, बीच में फिर भगवान ऑप्शंस देते हैं, मिडल ऑफ द चैप्टर ये हो सकता है, अगर ये तुमसे नहीं होता ये कर लो, ये नहीं हो सकता ये कर लो, और उसके अंत में फिर बताते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये सारे गुण वाले जो भक्त होते हैं वो भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं। इस तरह से वो चैप्टर 12 को खत्म करते हैं। श्लोक लगे सो अर्जुन जब ये सोच रहे थे कि आप भगवान कृपा करके अपने ही मुख से एक बार फिर से ये घोषणा करके बता दीजिए कि कौन श्रेष्ठ है, साकार की उपासना करने वाला या निराकार की उपासना करने वाला। साफ एकदम क्लियर क्वेश्चन। साकार और निराकार दो प्रकार के फॉलोअर्स जनरली होते हैं। विराट रूप से जुड़ी हुई बात है, एक विराट रूप को फॉलो करते हैं वो लोग, कई बार निराकारवादी भी होते हैं जो विराट रूप को फॉलो करते हैं। तो ये जुड़ी हुई बात है, इसलिए अर्जुन कंफर्म करना चाहते हैं कौन सा श्रेष्ठ है। तो वो क्वेश्चन पढ़िए।
अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक कौन सिद्ध माना जाए?
यस, कौन सा श्रेष्ठ है? प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में 35वें श्लोक में भगवान ने, प्रभुपाद ने बताया था तात्पर्य में कि दो तरीके से व्यक्ति भगवान को निर्विशेष रूप से देख सकता है। एक तो विराट रूप के रूप में उनकी पूजा कर सकता है, या दूसरा भगवान को अव्यक्त रूप से ब्रह्म के रूप में कल्पना कर सकता है। ये दो चीज से वो भगवान का चिंतन कर सकता है। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा है, कृष्ण हैज नाउ एक्सप्लेन अबाउट द पर्सनल, द इम्पर्सनल एंड द यूनिवर्सल एंड हैज डिस्क्राइब्ड ऑल काइंड्स ऑफ डिवोटीज एंड योगीज। मैं समबडी वुड लाइक टू रीड फर्दर। कृष्ण ने यहाँ पर इस तरह से बताया, जनरली द ट्रांसेंडेंटलिस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस।
इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्द में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है, वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है, निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य को निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा।
यस, सो ये प्रश्न एक रूप से देखा है तो अर्जुन अपने लिए ही पूछ रहा है कि मैं भक्ति योग से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है। विराट रूप में मैं भयभीत हो गया था और वो मुझे फिट भी नहीं हुआ, मैं वापिस आपके दो हाथ वाले स्वरूप को देखने के लिए रिक्वेस्ट किया। ये समझ लेना आवश्यक है हमारे लिए कि जब भगवान अर्जुन स्वयं ही चाहता है कि भगवान स्वयं अपने मुख से इसको प्रस्थापित करे, और अर्जुन एक कॉन्वर्सेशन है अर्जुन और बीच के, अब देखो अभी कृष्णा उत्तर देंगे, एंड वेन अगेन अर्जुन हैज समथिंग टू इन हिज माइंड, सो कृष्णा विल आंसर। ओके, गो अहेड विद द सेकंड।
भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में उजागर करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं।
स्पष्ट आंसर, स्पष्ट, कोई इधर उधर नहीं, वर्ड जगलरी भी नहीं, कुछ नहीं है इसके अंदर कि जो मेरे साकार रूप को मानने वाले हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। साकार रूप, साकार भी जिनका स्वरूप है, और निराकार जिसका जिसको लाइट को भगवान मानता है, जिसको जैसे ब्रह्मा तेज प्रकाश, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में चर्चा किया था ब्रह्मा परमात्मा और भगवान, तो ब्रह्मवादी उसमें भी निर्विशेषवादी वो होता है कि जो केवल कल्पना करता है ऐसे, और वो स्वयं को भी भगवान की तरह अपने आप को मानने लगता है। तो ये और एक दूसरा विराट रूप को मानने वाला, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, मीन्स भगवान कहाँ पर है, ये जो सृष्टि देख रहा वही भगवान है, ये विराट रूप है बस। इसी तरह से वो लोग देखते हैं, यद्यपि वो विराट रूप को नहीं देख सकते जो अर्जुन ने दिखाया था कुरुक्षेत्र पे, ऐसे विराट रूप को वो नहीं देख सकते, लेकिन जैसे नदियां जो है वो भगवान की नसें हैं, पर्वत जो है ना इस तरह से, और डिफरेंट ट्री जो वृक्ष है भगवान के शरीर के बाल है, तो इस तरह से बहुत सारे वर्णन आते हैं विराट रूप के। श्रीमद् भागवत पे भी है, ऐसा है जैसे भगवान का जो बैक है पीठ, या भगवान का जो विष्टा या स्टूल का जो क्या बोलते हैं उसका द्वार, वो असुर असुर लोग उधर होते हैं, ऐसे बहुत सारी डिस्क्रिप्शन है। हाँ, पशु मल संभव, मल के समान है, यस।
इंद्र अग्नि बजनात्म,
ऐसे कहीं कहीं इसे है, तो वो लोग इसी तरह से भगवान का साक्षात्कार करते हैं। तो एक रूप से देखा जाए तो दे बोथ आर इम्पर्सनलिस्ट, ही इज ऑल्सो इम्पर्सनलिस्ट, वो कृष्ण के साकार स्वरूप को नहीं मानते, भगवान के साकार स्वरूप को नहीं मानते। अब सुन, साकार का अर्थ होता है आकार वाला, अर्थात ये शरीर वाला जो दो हाथ या चार हाथ वाला है वो। इसके अलावा ये जो विराट रूप को मानने वाला या अव्यक्त ब्रह्म को मानने वाला है वो निराकारवादी होता है, भगवान के आकार को नहीं मानते। कई बार लोग बोलते रहते हैं ऐसा, हमने देखा है कोई कई लोग होते ऐसे कहते, वो तो निराकार है भगवान, तो निराकार है। हाँ, बहुत है, 99% पापा से 99% आर मायावादी, जो डिवोटी है वो 1% से कम, उससे भी कम होगा शायद। सब लोग वो तो निराकार है, वो तो निर्गुण है, ब्रह्म में परमात्मा विलीन हो जाते हैं, शिव जीव एक ही है, ऐसा सब बोलते रहते हैं। दे ऑल दे टॉक लाइक दिस, वही आप ही नारायण हो, नमो नारायण, उनको कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं।
नहीं, सबको नहीं मानते हैं, जरा सा कुछ हो
गया
तो उसको नहीं
मानेंगे, जिसमें अवज्ञा करती है उसे भगवान नहीं मानेंगे। उसको नहीं, लाइक दिस इम्पर्सनलिस्ट, बहुत सारे होते हैं ऐसे, आत्मा से परमात्मा, उसको ये भी नहीं पता आत्मा किसे बोलते हैं परमात्मा किसे बोलते हैं, लेकिन बड़े बड़े लास्ट लेक्चर देता होता है और उसकी सभा में हजार लोग बैठे होते हैं, और वो स्टेज पर जाकर बोलता है जीव या शिव एक ही है, जीव में शिव का मिलन हो जाए, हालांकि उसको कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहा है। अगर आप उसको डिस्क्राइब करोगे तो
कभी
टॉक ऑन
दैट, पुस्तक कैसी है, निर्गुण कैसी है,
लेकिन लेक्चर देंगे स्टेज के ऊपर जाकर के बोलेगा, सब बोलेगा, एक एक घंटा दो तालियां बजेगी, सब होगा, लोग रोएंगे भी सही उसकी पीपल विल क्राई ऑन हिज नौटंकी एंड स्टिल पीपल यू नो बट दे आर लाइक दिस यस आई नो देर जो इमोशनलिस्ट होते हैं, जो बहुत ज्यादा इमोशन वाले होते हैं, भाव वो क्या बोलते हैं उसको फैनेटिक इस प्रकार, वो लोग क्या होते हैं आई सीन बड़ी बड़ी कथाओं में ऐसे 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 करते हैं श्रोतागण, हालांकि उसको भी कुछ नहीं पता पड़ रहा है और ना ही बोलने वाले को पता पड़ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, और फिर भी बोलने वाले की धंधा भी चल रहा है, इसकी दुकान भी चल रही और इसकी दुकान भी चल रही है, दोनों का काम हो रहा है. So that has nothing to do with the reality. So भगवान ने कहा कि साकार ही सर्वश्रेष्ठ. Prabhupada has given wonderful purport. Sometime he chants, sometime he hears or reads books about Krishna, and sometimes he cooks prasadam or goes to the marketplace to purchase something for Krishna, or sometime he visits to which washes the temple and the dishes. Whatever he does, he does not let a single moment pass without devoting his activities to Krishna. Such action is in full samadhi. So, यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि भगवान ने जब ये कहा क्लियर आंसर, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है कि जो भक्त होते हैं वो साकार की उपासना करते हैं और हमेशा एक्टिव होते हैं, डल नहीं होते. सेवा आप देखो प्रॉपर ने लिस्ट बता दिया क्या क्या एग्जांपल के रूप में, दे आर वेरी एक्टिव, बहुत वो सर्विस हमेशा सेवा में जुड़े हुए होते हैं. और ये लोग जो होते हैं निराकारवादी, उनके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्या करेगा वो बेचारा, अब उसके लिए सब कुछ मना हो जाता है ना, अभी खा नहीं सकता, भोग फॉर्म होगा तो भोग लगेगा ना.
एक चीज इस पे और मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी आज्ञा से, वो उनके लिए वो भार होती है, उनके लिए वो जीवन भार होता है, भक्तों के लिए जीवन उपहार होता है.
वेरी गुड, दैट इज द प्रेजेंट, दैट्स गुड फॉर दैट. प्रभुपाद सेड दिस थिंग, एक बार मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर भी आई रिपीट इट अगेन. प्रभुपाद एक इसी तरह से एक इम्पर्सनलिस्ट था सामने, और प्रभुपाद ऐसे आमने सामने बैठते थे और बीच में टेबल रखा हुआ था, और प्रभुपाद अपने अपनी शैली में प्रभुपाद एक बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे, और सामने चेयर पर व्यक्ति जो था वो बात कर रहा था, वो निराकारवादी था, तो काफी बातचीत हुई. उसने कहा ऐसा है, प्रभुपाद ने कहा ये है, फिर प्रभुपाद ने शास्त्र का उदाहरण दिया, देखो इस शास्त्र में ऐसा कहा गया है, और उस सामने टेबल पर प्लेट में दो चार संदेश के लड्डू पड़े थे, स्वीट बॉल्स व्हाइट कलर के, बहुत सॉफ्ट, और सामने पड़े थे, वो उनके लिए रखा था जो गेस्ट आए थे ना प्रभुपाद को मिलने के लिए. जनरली ये सिस्टम है कि कोई भी गेस्ट आता है चाहे कैसा भी हो उसको प्रसाद खिलाना चाहिए, तो सामने का प्लेट में संदेश पड़े थे, तो गेस्ट के सामने रखा था, गेस्ट के लिए रखे थे, जो मेहमान आए थे उनके लिए. तो प्रभुपाद बात कर रहे थे और फिर प्रभुपाद ने कहा कि इसीलिए तुम मायावादी लोग, तुम निराकारवादी लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम अच्छा देख भी नहीं सकते, तुम अच्छा सुन भी नहीं सकते, तुम प्रसाद भी नहीं खा सकते, इसलिए ये प्रसाद हमें खाना पड़ता है. वी कैन इट, ये हम खा सकते हैं, तुम नहीं खा सकते, ऐसा करके प्रभुपाद ने संदेश का टुकड़ा लिया अपने मुंह में डाल दिया. बस लगे यू कांट इट दिस, हम खा सकते तुम नहीं खा सकते, तुम्हारे लिए मिथ्या है, हमारे लिए प्रसाद है. So, I mean, just imagine the confident level of Prabhupada. No nervousness, not a single nervousness while talking to anybody. Yeah, because it is directly, you know, sent by the Lord Himself, you know, man of Vaikuntha. Prabhupada mana kar, wo tum kha nahi sakte, main kha. So Prabhupada said this thing. वो बेचारे खा नहीं सकते, फूल की माला भी कैसे बनाएगा, लगाए तो डालेगा कहाँ, किसके गले में डालेगा, आकार ही नहीं है तो क्या करेगा. तो भगवान का आकार ही नहीं है तो ना फूल की माला डाल सकता है, ना प्रणाम कर तो कौन सी दिशा में करेगा. कहाँ पर भगवान तो प्रणाम भी नहीं कर सकता, ना उसके लिए प्रणाम करना है, ना प्रसाद खाना है, ना कुछ आरती करना है, ना आरती उतारने का भी दिशा पता नहीं, सो प्रैक्टिकली उसके लिए कोई कार्यशेष बचता ही नहीं। अभी क्या करेगा, निराकार है तो लीला, आकार है तो लीला करेगा, निराकार लीला क्या करेगा। अब निराकार जो लीला ही नहीं करेगा तो उसके ग्रंथ कैसे बनेंगे, क्या पढ़े, क्या क्या पढ़ेगा, क्या कथा करेगा। नहीं, वो लोग तो निराकार में विलीन होना चाहते। भक्ति तो केवल भगवान की होती है ना, विलीन हो नहीं सकते, क्योंकि वो
उसका टुकड़े नहीं हो सकते, तो चिपक भी नहीं सकता कहीं।
हाँ, नहीं चिपक सकता,
उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, किसी में जुड़ भी
नहीं सकता। हरा ग्रीन हरा तोता पेड़ पे जाके बैठ जाए तो क्या वो तोता पेड़ बन जाता है?
पत्ता नहीं बनेगा,
वो तोता ही रहेगा ना, पत्ता थोड़ी बनेगा। तो इसी तरह से प्रॉपर से वेरी क्लियरली दैट डिवोटीज एंगेज इन सर्विस आर बेटर, सेवा में जुड़े हुए। कई बार कहते हैं, एक व्यक्ति मुझे अभी कुछ मिला था, ये कर लूंगा वो, मैंने उसको अल्टीमेट बता दिया, ठीक है तुम जो कहते हो तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, टेल मी नाउ। तो ब्लैंक हो गया। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं ये तपस्या, ये साधना करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और भगवान तुम्हारे सामने आके खड़े भी हो गए, बताओ अब क्या करोगे? कुछ नहीं है, उसके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। तुमने अच्छी समाधि प्राप्त कर ली, अब क्या करोगे? तो सेवा ही है, सेवा ही करेंगे भाई। आप कुछ भोग लगाओगे, कुछ आरती करोगे, उनका उनका सेवा करोगे ना, जो उनको पसंद है वो सब कार्य करोगे। तो वही चीज तो हम बोल रहे हैं अभी कि भोग लगाओ, आरती करो, वही चीज तो प्रभा से वी आर सेइंग द सेम थिंग, वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि वही करो, सेम थिंग सेवा। नहीं, लेकिन वो तो पहले सब करेंगे, तत्पश्चात भगवान के साथ, दैट इज थिंग, दैट इज डायरेक्ट वे गोइंग थ्रू। तो ऐसे लोग जो होते हैं, सो अर्जुन अगर पहले तो ये बात सुन के बड़ा खुश हो गया कि भक्ति योग में मैं भक्ति योग का फॉलोअर हूं, तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। अभी अर्जुन ये सोच रहा है कि फिर ठीक है, वो लोग जो है जिसके जो जो आपके भक्ति योग से नहीं जुड़े, उनके विषय में कुछ बताइए। उनका जो वो लोग कर्म का त्याग कर देते हैं तो आपका अव्यक्त रूप की उपासना करने वाले हैं, तो उनका क्या हाल होता है, उनको क्या प्राप्त होता है, वो बताइए। नेक्स्ट थ्री एंड फोर टुगेदर।
लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा समूह के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं।
हाँ, तो ये लोग कर्मों का त्याग तो कर देते हैं, अव्यक्त की उपासना भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान ने कहा है कि माँ में वह प्राप्तवंती माँ में वह। तो यहाँ पर माँ में वह शब्द का अर्थ ये नहीं कहा कि वो भी बाद में तो कृष्ण के पास ही आते हैं, सर्वदेव नमस्कार हम केशव प्रति गच्छति, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भले केशव वो एग्जाम्पल कोई भी यूज करे, लेकिन उन लोग की जो स्थिति है, वो लोग भगवान के ब्रह्म रियलाइजेशन तक पहुंच सकते, बस मैक्सिमम उनकी जो परम पद जो है, परम पद उनका जो सर्वोच्च डेस्टिनेशन इस ब्रह्म, ये है उनको, क्या उसको बोलते हैं, ये नियर विंदाक्ष विमुक्त मानिनस। जो लोग अपने आप को मानिनस, मानिनस का अर्थ क्या होता है, मानते है नहीं, मानते है ऐसा लेकिन वो है नहीं, ये नियर विंदाक्ष विमुक्त, विमुक्त मानिनस, वो लोग सोचते कि हमने मुक्त प्राप्त कर लिया, मुक्ति प्राप्त की। तो ये अस्त भाव, वो अस्त भाव अविशुद्ध बुद्ध है, वो उनकी बुद्धि कमजोर है, अविशुद्ध है, अर्थात उनकी अशुद्ध बुद्धि है, ठीक नहीं है। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम, वो लोग परम पद तक पहुंच जाते हैं, आरुह्य कृच्छ्रेण वहां तक आरूढ़ हो जाते हैं, परम पद तक, पतंती अध फिर गिर जाते ना युत उष्म दंगर है, क्योंकि उनके उनके उन्होंने भगवान के चरणों में अपनी भक्ति को स्थिर नहीं किया, इसलिए गिर जाते। ये श्रीमद् भागवतम से आपको प्राप्त होता है ये श्लोक। अर्थात वो परम पद तक पहुंच सकते हैं, अंत तो गत्वा बहुत मुश्किल मार गई है, फिर भी अगर सब सब कुछ कर ले, सब सफलता प्राप्त कर ले, सब प्रकार के इंद्रियों का संयम कर ले तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं। और कभी इस दौरान सौभाग्य से कभी बीच में या अंत में किसी महान वैष्णव या महान भक्त का अगर उनको संग मिल जाए, जैसे प्रकाश आनंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु का संग मिला, सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु का संग मिला, अगर ऐसा कभी कुछ हो जाए तो वो लोग फिर अपने पथ को छोड़ करके कृष्ण की सेवा में छूट जाते हैं। सो दैट इज पॉसिबल। यस,
सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप मतलब भक्त का संग हो, तो ऐसे अगर भक्त का अपराधी हो गया उनसे तो भी उनका दुर्गति होगा,
अगर किसी डिवोटी का अपराध
हो। हाँ, ऐसे जो जो निराकारवादी है, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है जैसे वो प्रभुपाद जैसे वो निराकारवादी थे, हो सकता है कि वो एकदम ऑनेस्ट निराकारवादी जैसे भगवान ने बताया ऐसे ही, मगर वो प्रभुपाद का अपराध ही इतना से उन्होंने किया, इतना मतलब
आर्ग्यूमेंट किया वगैरह वगैरह, तो उनका पतन कैसे? इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज होती है। प्रभुपाद हमेशा चाहते थे कि अगर लॉजिकली समझने के लिए अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, चैलेंजिंग भाव से नहीं होते, समझने के भाव से होते हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट को प्रभुपाद वेलकम करते थे। अगर कोई चैलेंजिंग भाव से आर्ग्यूमेंट प्रभुपाद के साथ किए भी तो प्रभुपाद ने उनका खंडन तो किया। अब ये प्रभुपाद पे निर्भर रहता है कि उस व्यक्ति पर कृपा करे या उसको छोड़ दे, ये प्रभुपाद पे निर्भर रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति कितना भी दुष्ट हो, लेकिन वैष्णव का हृदय जैसे प्रभुपाद का हृदय जो है वो ऐसा था कि कितना भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, अपराधी से अपराधी हो, हीन से हीन कक्षा का हो, लेकिन प्रभुपाद कृपा का गुण कभी नहीं छोड़ते थे, वो हमेशा कृपा करते थे, ये उनका विशेष गुण। लेकिन ये वैष्णव पर निर्भर रहता है, प्रभुपाद प्रभुपाद है लेकिन जरूरी नहीं कि सभी ऐसा व्यवहार करे, तो ये भक्त पर निर्भर करता है। अगर कोई बहुत चैलेंजिंग है भक्त को चाहिए, इसको मैं कृष्ण भक्ति नहीं देना चाहता, फिनिश, ही इज द बॉस, ही कैन डिसाइड, उनको कोई रोक नहीं सकता।
चौथे श्लोक की आखिरी लाइन है कि सर्वभूत हिते रता, मतलब उसमें भी एक कंडीशन अप्लाई है इन सब करने के बाद भी कि उनको समस्त प्राणियों के हित के लिए तो काम करना ही पड़ेगा फिर भी।
यस यस, इज देयर एज आई मेंशन किया है यहाँ पर,
तो तभी जाके कहीं वहाँ पहुँच सकते हैं
एट लास्ट स्टैच्यू में,
सबका काम तो करना ही पड़ेगा,
कल्याण कार्य करना पड़ेगा, हेल्पिंग अदर्स,
जितने लगा रहना पड़ेगा।
यस, दैट इज ट्रू। सो इस तरह से अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रभुपाद बड़े स्पष्ट रूप से ये चीज को आई मीन वी डोंट गो टू द पर्पट एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर, लेकिन इसमें आप समझ पाएंगे, अगर आप पर्पट ध्यान से पढ़ना बाद में, तो इसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रभुपाद मायावाद की जो दृष्टिकोण है उसको समझाते, अभी आगे है उसका समझ फर्दर। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक लिटल, देखो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक सम पॉइंट्स, ये तीन और चार है उसमें से, जो लोग परम सत्य की उपासना करने वाले होते हैं वो परम सत्य को किस कौन से गुणों से देखते हैं, तो इसमें सात ऐसे कैरेक्टरिस्टिक प्रभुपाद चर्चा किए हैं। अनमैनिफेस्टेड, आई मीन दैट्स ओके, अगर आप चाहो तो तात्पर्य से कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको अलग से बता रहा आपको, इसी लोग आई गो विद इंग्लिश वर्ड्स इंस्टेड। अनमैनिफेस्टेड, बियॉन्ड द सेंस परसेप्शन, ठीक है, आई ट्राई, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आएगा बट आई ट्राई। अव्यक्त रूप, फिर इंद्रियों से परे सर्वव्यापी अचिंत्य अभी अनचेंजिंग फिर स्थिर और इमूवेबल फिक्स्ड एंड इमूवेबल दीज आर द सेवन कैरेक्टरिस्टिक दे टॉक ऑन एब्सोल्यूट ट्रूथ और उनको पूजा करने के साथ चार तरीके हाउ दे वर्शिप अनमैनिफेस्टेड चार तरीकों का वर्णन प्रभुपाद ने किया है संक्षिप्त में इंद्रियों के संयम सबके साथ समान व्यवहार सबका कल्याण कार्य और तपस्या तो ये पूजा परम सत्य की पूजा करने के निराकार रूप की पूजा करने के तरीके हमारी जो नवदा भक्ति है ना ये चतुर्दा उपासना है इस तरह से वो लोग निराकार की उपासना करते हैं सो बस एक जस्ट टेक वन मोर श्लोक आई एम वी स्टॉप हियर पांच नंबर का श्लोक लीजिए
जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है
दैट इज वेरी डिफिकल्ट शरीरधारी लोगों के लिए जिनका शरीर है उसको तुम बोलो कि तुम भूत कैसा होता है सोचो क्या करेगा वो जिनका शरीर नहीं है चाहे वो ब्रह्म के विषय में पूजा उपासना करे तो हम तो एक छोटा सा मंडन एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक जो गोस्ट होता है उसके पास कोई शरीर नहीं होता है तो वो क्या अनुभव करेगा उसकी कल्पना हम करना मुश्किल है हमारे लिए बहुत मुश्किल है राइट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो अगर आप सोचो कि आपके पास आपको देखना है लेकिन आपके पास आंखें नहीं है आपको बोलना है लेकिन आपके पास जीवा नहीं है आपको चखना है लेकिन स्वाद करने के लिए नहीं आपको सुनना है लेकिन कान ही नहीं है तो इस तरह से आपकी सारी कार्य आपके हार्डवेयर ही कोई है ही नहीं केवल सॉफ्टवेयर बस सारे कमांड वापिस आते प्रिंट डालो कुछ नहीं होता कोई हार्डवेयर काम ही नहीं कर रहा है तो आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति भगवान को किस तरह से समझ पाएगा कि हम शरीर में रहने वाले लोग हैं और बिना शरीर वाले का कल्पना कैसे करेंगे हम और इस तरह से भगवान की उपासना करना ये और भी अधिक कठिन हो जाता है वेरी डिफिकल्ट प्रभुपाद ने इस बात को भी यहाँ पर एम्फसाइज किया जो हम शरीरधारी लोग हमें तो कोई अनुमान ही नहीं है तो भगवान शरीरधारी को समझना बहुत मुश्किल है भगवान के निराकार स्वरूप को और साथ साथ में ये शुष्क हो जाता है शुष्क का अर्थ होता है कोई रस रुचि कुछ रहेगा नहीं देयर इज नो एंथुसियाज्म इन ऑल्सो इतना आपको इतनी सारी चीज नेगेटिव सुनने को आएगी कि ना स्वरूप है ना चल सकते ना खा सकते ना पी सकते ना देख सकते ना तो वो सोचते कभी ऐसे भगवान का करने का क्या कि जो कुछ कर ही नहीं पाते अपने आप से हैज नो फॉर्म देयर इज नो एंथुसियाज्म वो लोग करते हैं बहुत मेहनत लेकिन उनको कहीं पर भी उत्साह कोई रुचि कोई आनंद या कुछ नहीं मिलता और वो कहेंगे कि सोचो अभी निराकार तो कृपा भी नहीं देगा ना निराकार कृपा कैसे देगा तो अभी आप सोचो कि आपको कृपा ही नहीं मिलती तो आप आगे कैसे बढ़ोगे कृपा का बिना कृपा के तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे तो ये इन लोग के पास कृपा भी नहीं है बेचारे रोते रहते हैं हमेशा क्लेशो दिखते रखते शाम अव्यक्त आसक्त होते शाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम बहुत ही कष्टदायक बहुत कष्ट इसमें इतना कष्ट होता है मायावाद को अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि भक्तों को भी तो कष्ट होता है भक्तों को भी चाहने का पालन करना पड़ता है 4:30 बजे उठना पड़ता है मंगला आरती करना पड़ता है ये सब करना पड़ता है तो वो भी तो कष्ट है उसमें भी तो तपस्या है लेकिन वास्तव में तपस्या नहीं है क्योंकि भक्तों को उसमें आनंद प्राप्त होता है तपस्या जरूर है कष्ट भी होता है 4:30 बजे मंगला आरती उठ के जाना कष्ट होता है अवश्य लेकिन उसका कष्ट का जो परिणाम आता है वो आनंद में आ जाता है ही बिकम ब्लिसफुल, तो उसके लिए वो सौदा महंगा नहीं होता। उसको लगता है कि अज्ञानता के वश में मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन वास्तव में कोई कष्ट नहीं है, तो उसको अंत में केवल सुख ही प्राप्त होता है, आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। लेकिन इन लोग का तो शुरुआत में भी दुख होता है और अंत में भी दुख होता है, खाली हाथ ही रहते बेचारे। सो इसलिए इस श्लोक में इस विषय का विशेष वर्णन किया गया है कि भक्ति योग जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, और ये जो निराकारवाद जो है वैसे ठीक से रखते शाम वो नहीं हो सकता। और ऐसे भी भगवान कहते हैं कि मुझे ये लोग समझ नहीं पाते, निराकारवादी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी। सो एनी अदर पॉइंट, नौवें अध्याय में ऐसा कहा है इफ यू रिमेम्बर, कि अगर आप ध्यान से देखो कि मायावादी लोग अगर ऐसा आर्गुमेंट डाल दे ये श्लोक सुनने के कि क्लेशो दिखता रखते शाम, तो अगर वो लोग ऐसा कह दे कि भगवान खुद कह रहे हैं कि ये मार्ग क्लेश से भरा हुआ है, ठीक है, तो मैं इस मार्ग को नहीं करता, इसका पालन नहीं करता, अर्थात मैं ध्यान या त्याग तपस्या का मार्ग वैराग्य का मार्ग जो है उसको मैं पालन नहीं करता, क्यों, भगवान ने मना किया, क्लेशो दिखता रखते शाम, ये आर्ग्यूमेंट, तब मैं क्या करूंगा, मैं कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाऊंगा, मैं कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाऊंगा, यद्यपि मैं ये तो अवश्य जानता हूं कि कृष्ण का जो स्वरूप है वो टेम्पररी है, लेकिन मैं उनकी भक्ति का मार्ग ले लूंगा और उपासना निराकार की करूंगा, समझे, मैं भक्ति के मार्ग में जुड़ जाऊंगा, कृष्ण के टेम्पररी स्वरूप को स्वीकार भी कर लूंगा, और फिर अंत में जब मुझे थोड़ी सफलता मिलेगी तो कृष्ण जो है उसका जो स्वरूप है टेम्पररी उसका त्याग कर दूंगा और निराकार के अंदर विलीन हो जाऊंगा। अगर मैं ऐसा कहते हैं तो प्रभुपाद भगवान ने क्या कहा था, भगवान ने कहा था इसके उसके लिए कि अवधानंति माम मूढ़, मूढ़ लोग जो मुझे मनुष्य समझते हैं, साधारण मनुष्य समझते हैं, टेम्पररी मानते हैं, वो लोग अवधानंति, वो मुझे समझ नहीं सकते, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो लोग मुझे समझ ही नहीं सकते कृष्ण को, तो फिर बोले कोई बात नहीं, हमें कृष्ण को समझ के कोई फायदा नहीं, हमें समझ नहीं का है, हमें कृष्ण को समझ नहीं, ठीक है। तो फिर भगवान नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना चेतस, उसके सारे प्रयास, उसकी सारी आशाएं, उसके सारा ज्ञान, सब कुछ विफल हो जाता है, मोघ आशा मोघ कर्माणा सारे कर्म विफल हो जाते, मोघ ज्ञान चेतस आसुरीम राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम सुता, और लोग प्रकृति की मोहिनी से परास्त होकर के इस प्रकार की आसुरी बुद्धि को स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार के मायावादी निराकारवादियों को भी उठा करके पटक दिया कि इस तरह से भी तुम भगवान को नहीं समझ सकते। सो इन दिस वे दिस निराकारवाद, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक रादर, ये अगर इम्पोर्टेंट जो थीम है मायावाद की उसमें से एक ये थीम में आता है, इज वन ऑफ द थीम। ओके सो वी मे स्टॉप हियर।